मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायुनो विरहकाकर्याजुभाव पुत्रेति तन्मे तया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति देव्यै राधी संनयनं एक बहुत ही धनी माने समृद्ध व्यक्ति थे। धन का शेष नहीं था, धन धान्य पुत्र कन्या सुंदरी स्त्री सबसे भरपूर थे। एक संत उनसे मिलने गया, संत ड्योढ़ी में पहुंचकर खबर दी, कहो महाराज श्री से मैं मिलने आया हूं, दो मिनट के लिए हमें समय दे। महाराज ने सोचा कुछ मांगने आया होगा, संत है, उनको कुछ न कुछ मांग होती है, कुछ मांगने के लिए आते हैं, इसलिए कुछ झुझला गए और बोले जगह दो, दो तीन दिन बाद आए, आज मुझे फुर्सत नहीं है, लौटा दिया। फिर दो दिन बाद वो आए संत, फिर खबर दी ये महाराज से मुझे मिलना जरूरी है, वो मुझसे दो मिनट समय निकाल करके मिले। उन्होंने आज फिर कह दिया आज समय नहीं है, पीछे मिल लेंगे। संत जी उनकी रानी के पास में पहुंचे और बोले खबर दी कि मैं रानी से मिलना चाहता हूं। रानी जी बड़ी दयालु थी, हृदय की स्त्री का सेवा भावना, पुरुष लोग जरा रूढ़ भी होते हैं, स्त्रियों के पास में पहुंच जाए तो बड़ी दया से जैसे बेटे और बेटियों को पालन करते हैं, सब पर कुछ स्नेह रखती हैं, उनका स्नेह से हृदय बना रहता। उन्होंने सुनते ही खबर दिया जिस उनको महात्मा जी को बुला लाओ और उचित आसन देकर के बैठा कर, महात्मा जी क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। महात्मा जी ने कहा मुझे कोई आदेश नहीं है और न मुझे कुछ लेना है, मैं तो भगवान का भजन करता हूं, किंतु साथ ही साथ में मैं ज्योतिष विद्या में पारंगत भगवान के भजन करते 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 हठात मैंने देखा कि ये राजा मरने वाला है, 15 दिन में ये जरूर मर जाएगा, तो मुझे इच्छा हुई ये राजा को सूचना कर दूं, अपना वो जो कुछ करना होगा कर लेगा, इसलिए मैं 4-5 दिन पहले आया, राजा को खबर दी और इसने मेरे मुझसे मिला नहीं, सोचा कि संत लोग मांगने के लिए आए। आजकल संत भी ऐसे हैं घर बार स्त्री पुत्र छोड़ करके कुछ पैसों के लिए दूसरों के दरवाजे पर जाते हैं, सांस में बोलते हैं, क्यों साधन भजन तो करते हैं, घर बार छोड़ करके स्त्री पुत्र छोड़ करके फिर वो भी मकान बनाने के लिए उनको जरूरत पड़ती है, पंखे की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए धनी लोगों के पास में जाते हैं, अपना धन तो छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, फिर दूसरों के पास वही निपोड़ने के लिए हाथ जोड़ करके उनके पास में गिड़ गिड़ाते हैं। ये संत का लक्षण है। संत तो भगवान भजन करके और उसका फल लोगों में बांट, उनका जीवन सुखमय और शांतिमय कर दे, ये संतों का लक्षण। भगवान की उपलब्धि करे, जीवन मरण क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या है, इसको उपलब्धि करे। अपने पद को भूल करके ऐसे ही लोग संतों का नाम बिगाड़ रखा है। यथार्थ में ये संत लोग नहीं है, जो दूसरों के पास में अर्थ के लिए जाते हैं। अर्थ तो उनके घर में ही था, छोड़ करके चले जाते। तो उस संत ने कहा कि माता जी, मैं तो आया था इनको बतलाने के लिए, ये तैयार हो जाए, जो कुछ करना है वो कर ले, इनको मरना है। किंतु चार दिन तो ऐसे ही निकल गया, पांच दिन निकल गया, 15 दिन से अब केवल 10 दिन है, इनको जरूर मरना होगा। कोई भी विश्व का ऐसा नहीं है जो इनको बचा दे, चाहे लाख विश्व के डॉक्टर आए, वैज्ञानिक आए, कोई नहीं बचा। मुझे बल्कि यहाँ पर जेल में रख दो और देखो जैसे ये मरते हैं कि नहीं। हानी तो घबरा गई और एकदम व्यतिव्यस्त हो गई, पागल सी हो गई। और उसी समय मैं खबर दिया राजा को, महाराज बहुत जरूरी काम है, आप जल्दी से आइए। इनकी बात सुन करके साथ ही साथ रानी के राजभवन में वो पहुंचे। वो अपने राज्यसभा में कुछ काम कर रहे थे, एक सेकंड की देरी नहीं। संतों से मिलना जरूरी नहीं, संसार की कोई बात सुनने के लिए ये जरूरी है। आज का समाज भी ऐसे पथभ्रष्ट हो चुका है। क्या हमें जरूरी चीज है, क्या हमको सुखी होने के लिए आवश्यक है, ये नहीं सुनना चाहता। उनको ऊपर से नेत्र से जो दिखाई पड़ते हैं इसी को सत्य मानते हैं। इसके अंदर में आत्मा है और इसको क्या चाहिए, ये कैसे सुखी और शांति अजर अमर होकर के भगवान की सेवा में उस प्रेम आनंद को लाभ कर सकती है, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते ये लोग। एक मिनट की देरी नहीं है, राजा वहां पर पहुंचे। रानी ने कहा, अरे वो संत आपसे 5-7 दिनों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था, आपने नहीं मिला उससे, मिले नहीं, आज मुझसे मिला और बतलाया कि राजा अब 10 दिन में जरूर मरने वाला है, जो कुछ करना है कर। राजा ने कहा कि वो संत इसलिए मिलना चाहता था, कहां गया, तो अभी तो बैठा था, कहां गया, कैसा था, फिर मुंडन कर रखा था और यहाँ पर तिलक था, वो दुपंड गले में तुलसी की माला थी, हाथ में झोली थी, हरे कृष्ण कर रहा था, अभी तो बैठा था, नहीं जाने कहाँ गया। गोरा रंग का था, बहुत ही अच्छा सुंदर सुशांत आदमी। अच्छा, उसने आकर के साथ ही साथ आदेश दिया, जहां भी हो उनको ढूंढ लाओ, बस 20-25-30 CID और पुलिस और ये सब छूटे और उनको खोजने के लिए जो मिलना नहीं चाहते थे आज मिलने के लिए आतुर होकर के उनको भेजा। उन लोगों ने खोजते देखा एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए आराम से आंखों से को बंद किए हुए और हरे कृष्ण कर रहे हैं। अब वो जो गए थे साष्टांग उनको प्रणाम किया, महात्मा जी महाराज जी ने आपको बुलाया है, आप कृपा करके पधारिए। ठीक है चलो। वहां पर आए राज दरबार में, महाराज आज साष्टांग उनको प्रणाम किया और अपना सिंहासन पर लेकर के उनको बैठा दिया और बैठा जी, महाराज क्या आपने ये कहा है कि मैं 10 दिन के अंदर में मर जाऊंगा, यह ध्रुव निश्चित है, इसे कोई नहीं डाल सकता, आप जरूर मरेंगे। मैं क्या कहूं, अब जो कुछ करना है कर लो। और तुमने भी असल काम नहीं कर दिए कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे कोई परामर्श दें कि देखो तुमने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं, कुछ धर्म का भी काम किया है, बुरा भी काम किया है, किंतु अच्छे अच्छे काम किया है, माता पिता की सेवा की है, लोगों को दान भी दिया है, सब कुछ किया है, इसलिए तुमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की गति होगी और वहाँ पर तुमको दर्शन के बाद में जाना है। किंतु एक बात है, तुमने कुछ धर्म के विपरीत भी काम किए हैं, इसलिए वहाँ जाने पर आजकल भारतवर्ष से कुछ मर करके मच्छर होकर के यहाँ आए, काले काले मलेरिया के, वो लोग को काटने से यहाँ पर भी मलेरिया बुखार होने का संदेश है और हो जाने से आदमी मर जाते हैं और स्वर्ग में भी ऐसे उनको कष्ट होगा। इसलिए एक बात करो, स्वर्ग में तुम्हारी जितनी भी सुख की विषय है वो सब मिलेगी, अस्पराएं मिलेंगी, नंदन कानन का भोग मिलेगा, अमृत खाने के लिए मिलेगा, किंतु जरा मलेरिया ज्वर से बुखार से तुम जरा बचे रहना। वहाँ पर मच्छरदानी भी बड़ी सुंदर है किंतु एक कोने में फटी हुई है, तो तू एक बात करना, यहीं से सुई और धागा ले जाना, बाकी सब चीज ठीक। तो सिर पर हाथ दे करके बोला, सुई धागा, मैं सुई धागा कैसे ले जाऊंगा, ये शरीर ही तो नहीं जाएगा। अरे बेवकूफ, सारा जीवन तुमने किया किया, एक सुई धागा भी जहां लेकर के नहीं जा सकता और दिन भर संसार के बेकार के कामों में लगा रहा, परमार्थ के लिए तुमने क्या किया, जो सुई धागा भी नहीं ले जा सकता। ले जा सकते हैं आप लोग, इसमें आप लोग बड़े बड़े धनी आदमी हैं, दिन रात व्यस्त रहते हैं, आप लोगों को समय नहीं मिलता है कि हरि नाम करें, भगवान की भक्ति करें, समय नहीं। स्त्रियों को तो मैं कुछ स्वाभाविक रूप में कुछ भगवान ने दिया है वो तो कर लेते हैं और सोचते हैं कि उनका आधा हमको तो मिल ही जाएगा, इसलिए आप लोग को जरूरत नहीं। स्त्रियों में भी कोई गणेश की पूजा करे, कोई दुर्गा की, राधा कृष्ण का भजन करने में जो सबके शिष्ट हैं उसमें रुचि नहीं लोगों की जाती है। उन लोगों की धारणा है कि राधा कृष्ण का भजन करने से वो संसार के सारे सुख वो ले लेंगे और हमें रास्ता का फकीर बना देंगे, इसलिए नहीं, गणेश की पूजा होनी चाहिए, शंकर की, दुर्गा की, पार्वती की, मनसा जी की, विशेष करके नई कोई देवता आई है क्या, संतोषी मैया आ गई हैं, तो इसकी पूजा न करें। राजा ने कहा मैं क्या करूं, ये क्या करूंगा बतलाओ, मरना जरूर है, एक बात करो, अब 10 दिन का समय है, राज्य को एक किनारे रखो, मंत्रियों को दे दो, अपने बेटों को दे दो, राज दरबार में उसकी व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठो और बैठ करके अभी से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, पर खाने के समय में थोड़ा सा खा लो, वो भी अधिक नहीं, जितना हो सके 10 दिन में ये करो, तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ तक ईश्वर का जाना भी तुम्हारा रुक जाएगा, और कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ से फिर लौटना नहीं होता, स्वर्ग में जाने से तो लौट आना पड़ता है, वहां से लौटना नहीं होगा। इतना कर करके वो चल दिए और वो गुरु से उन्हीं से हरिनाम लेकर के और हरिनाम जपना आरंभ कर दिया, बड़े विश्वास के साथ, यहाँ तक कि पत्नी से भी नहीं अधिक बोलते, घर वालों से भी नहीं बोलते और दिन रात उसी में लगते। नतीजा ये हुआ कि जम के दूत उनके पास नहीं आए, 10वें दिन मृत्यु आई, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और सीधे बैठ उन्होंने। आप लोग इस पर चिंता कीजिए, अभी हाल में इंग्लैंड में बड़े भारी वहां के व्यापारी मिले, व्यवसायी बहुत धनी, आप लोग उनके पासंग में भी नहीं ठहरे, करोड़ डॉलर पाउंड उनकी रोज की आमदनी, कितने बड़े। बाई चांस उनसे हमारे शिष्य की भेंट हो गई, हमारे शिष्य ने उनसे कहा कि महाराज आप तो बड़े भारी व्यवसायी हैं, लाखों पाउंड आपके डेली के इनकम है, आप बतलाइए आपकी उम्र 50-60 की हो गई है और कल यदि आपकी मृत्यु हो गई, देश हो गई, तो क्या होगा? क्या होगा? बस सुन जाओ, पत्ती पर हाथ से। मैंने तो कभी चिंता नहीं की ये क्या होगा, मैं मरूंगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। किंतु अब मैं समझ में, मरना तो भी होगा, क्या करूं, मेरी समझ में पागल हो गया। किंतु भारत की ऐसी संस्कृति है, बचपन से ही माता पिता और सत्संग मिलने की संभावना। आप लोगों ने बुलाया नहीं, अब मैं चला आया। ऐसे ऐसे कितने साधु संत आते रहते हैं, सुनने का सुयोग होता है। और इतने पर भी यदि आप लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, जीवन शून्य हो गया, बेकार का। सुअरों से, गधों से हम लोग किस लिए श्रेष्ठ है मनुष्य से? वो भी खाते पीते मौज करते हैं, बच्चे होते हैं और हम लोगों के भी होते हैं। हमें अपने बच्चों की शादी की चिंता होती है। यदि चार लड़कियां हैं तो सोचो, कम से कम 4-5 लाख रुपए के लिए शादी के लिए चाहिए, तो दिवाला ही निकल जाएगा। सुअरों को एक साथ में 16 बच्चे होते, उनको कोई चिंता है कि इनकी कहां शादी देंगे? महल बनाने की कोई चिंता होती है? कुछ नहीं। तो इस विषय में वो श्रेष्ठ समझते हैं, इस चीज को समझो। कोई दायित्व नहीं है, उनका दो ही काम है, खाना और बच्चे पैदा करना और सो जाना, बस। आप लोगों को तो रात में नींद नहीं आती होगी, डॉक्टर से दवा लेकर के तब सोते हैं, और उनको कोई चिंता नहीं। इस विषय को सोचिए, जीवन कैसे सार्थक हो। हम मनुष्य सब प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए कि हम आत्मा का रियलाइजेशन कर सकते हैं, आत्मानुभूति हो सकती है, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते, जितने भी वो उन्नत हो। आप लोग सवेरे बैठ करके कुछ नाम कर सकते हैं, कुछ भागवत पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, सत्संग में आ सकते हैं। गाय, बैल, भैंस, शेर आएंगे यहाँ पर सुनने के लिए, और वो भी सुनेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन इसीलिए श्रेष्ठ है। हम सत्संग में अपने को यह समझेंगे, ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। जब शरीर ही नहीं हो तो मैं अग्रवाल हूं, और मैं और क्या हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं, ये भी नहीं हूं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, महाप्रभु जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, हम सन्यासी नहीं हैं, हम अग्रवाल नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। गोपी भरसु पदपत कमलियो दास दासा, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक से भी क्या, बस यही। कुछ लोग हैं बस हम अग्रवाल हैं, अग्रवाल समाज का कल्याण हो और बाकी जहन्नम में जाए, कोई मतलब नहीं। ये तो पशु का धर्म है, यहां तक समय नहीं। हम स्त्रियां हैं, स्त्रियों को स्वतंत्रता मिले और पुरुषों जैसा अधिकार मिले। भाई क्या पुरुषों का अधिकार चाहिए? पुरुषों का अधिकार जैसा हमको मिले, और पुरुष लोग बच्चा पैदा करें और हम बच्चा पैदा कराएं, ये पुरुषों के समान अधिकार होगा? कैसे पुरुषों का अधिकार होगा? किसी जानवरों में भी पुरुष और स्त्री का, हाँ, प्रेम के साथ में मिलने पर पुरुष भी उनके अधीन हो सकता है, ये तो ठीक है। तो ये न छोड़ सकते स्त्रियां अधिकार मांग रही। अब कुछ जन्म में बच्चे कहेंगे कि हमारा अधिकार चाहिए, वो कहें चाहिए हमारा अधिकार चाहिए, वो कहेंगे गवर्नमेंट से जी हमारे लिए स्पेशल ये छूट होनी चाहिए। अरे सभी मिलकर के देश की उन्नति के लिए, राष्ट्रीय उन्नति के लिए, विश्व की उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए कुछ क्यों नहीं करते? इसमें विश्व का कल्याण है। आज अपने संसद की बातें जानते होंगे, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हैं, जब हमारे कर्णधार ये लड़ रहे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, देश का कोई हित का उनके अंदर में विचार नहीं है, और हमारे वोट देने वाले भी ऐसे ही हैं जो गुण को न देकर के जाति और समाज और इसके लिए दे रहे हैं, राष्ट्र का कोई हित नहीं, विश्व का कोई हित नहीं, ये क्या देश का कल्याण कर सकते हैं जो अपने लड़ रहे हैं दिन रात, इसलिए इसमें कल्याण नहीं है। यदि हम लोग चेते हैं आत्मकल्याण के लिए कुछ करें, विश्व का कल्याण हो, मां तमसा ज्योतिर्गमय, हमारे देश का मां तमसा, तमसा माने तम मन अंधकार, अंधकार में मत जाओ। हमारे वेदों में अग्रवाल नाम लिखा है, ये अग्रवाल समाज है, ये ब्राह्मण समाज है, ये वैश्य है, ये ईसाई है, ये कहीं लिखा है कहीं नहीं। हाँ, मनुष्य जाति की बात आई है यहां तक तो ठीक, ये सब चीजें सीमाएं, ये सब चीजें नहीं है, प्राणी मात्र के लिए कहा गया, पुनशांग प्राणी मात्र, प्राणी मात्र का कल्याण, अंधकार की तरफ मत जाओ। माने क्या, शरीर में आसक्त होना ये अंधकार है, इसमें मत आसक्त हो, आत्मा इसके अंदर में है, ये प्रभु का अंश है, इस चीज को समझो। आज हम जितना धन कमाने के लिए पागल हो रहे हैं, ममता से कमाते हैं, हमारे असल जो संपत्ति कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम है, इसे वंचित हो रहे हैं, इसके लिए तनिक भी ध्यान नहीं देते, इसे जीवन में कोई भी सुखी नहीं है। आप रावण की चिंता कीजिए, हिरण्यकश्यप की चिंता कीजिए, जिनकी कैसी लंबी आयु थी, सोने का घर था उनका, महल था, एक नहीं पचासों हजारों स्त्रियां थी, उसे भी मन नहीं भरा, तो सीता जी जैसी लक्ष्मी को भी चुरा करके अपहरण करके लाया, सुखी रहा, जरा विचार कीजिए। धन से सुख होता तो रावण सोने की लंका नहीं रह सका सुखी, आप लोग मार्बल लगाने से क्या सुखी हो जाएंगे घरों में? मैंने देखा अमेरिका में, यहां पर आपके जैसे राजभवन बने हैं, उनकी तट्टी घर में उससे अच्छी है, करोड़ों रुपए का उसमें लगे हैं, सोने लगे हुए हैं, और सबसे दुखी वो है, सबसे दुखी वो है। संसार में यदि दुखी है तो वो धनी राष्ट्र, उनकी पत्नी से एक दिन नहीं बनती, रोज डाइवोर्स होते हैं, उनके बच्चे किसके हैं इसका कोई ठीक नहीं, कहां सुख है? इन चीजों में सुख नहीं है भाई, याद रखो। आजकल क्या फैशन हो गया, हमारी लड़कियां केस कटाने लगी, जैसे कुत्ते के केस होते हैं ना वैसे केस कटाती हैं, वहां की औरतें हमारी वेशभूषा, हमारी ब्रज की भूषा है, जैसे पहले था ना क्या लहंगा चुनरी, आप लोगों जैसे साड़ी पहनती हैं, और आजकल करके हमारी पगली लड़कियां, मूर्ख लड़कियां कुत्ते जैसा बाल कटाती हैं, न जाने क्या करती हैं, पाउडर लगाती हैं आर्टिफिशियल, जिससे उनको रोग हो जाता है, सफेद मुख में सफेदी आ जाती है, न जाने कैसे कैसे रोग होते हैं। ब्रह्मचर्य तो धारण करेंगे नहीं, आएगा कहां से ये सब चीजें? इसलिए पश्चिम देश के विचारों को ये ग्रहण कर रहे हैं, और पश्चिम वाले लोग हमारे पीछे पीछे अब दौड़ रहे हैं, लाखों लोग हमारे शिष्य हो रहे हैं, और हमारी सभ्यता को, संस्कृति को, भगवान नाम को और भक्ति को ग्रहण करने जा रहे हैं। होश नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, हम लोग पश्चिमी आधार पर रुपये केवल पहचानते हैं, बाप को नहीं पहचानते, मैया को नहीं पहचानते, भैया को नहीं पहचानते, पत्नी को नहीं पहचानते, जैसे पश्चिम देश में केवल कुत्ते पहचानते हैं स्त्रियां या पुरुष, पिता पर विश्वास नहीं, पति पर विश्वास नहीं, स्त्री पर विश्वास नहीं, लड़की पर विश्वास नहीं, बेटे पर विश्वास नहीं, कुत्ते पर विश्वास नहीं, ये कुत्ता नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुत्ते को टालाने के लिए लाते हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार डॉग्स, हाउंड डॉग्स रखते हैं, ये विश्वासघात नहीं करेंगे, और हमारी पत्नी हमको छोड़ करके चली जाएगी, कुत्ते के नाम से बैंक में लाखों डॉलर जमा कर देंगे, स्त्री के लिए नहीं, और स्त्री भी अपने कुत्ते पर विश्वास करेगी पति पर, इसे सुखी रहेंगे? ये सुखी नहीं रह सकते। जब इतनी बातें नहीं समझ से गोपियों का प्रेम, और कहां गोपी गीत, जुगल गीत और भ्रमर गीत सुनेंगे, देखी आसक्ति तो गई नहीं, एक साधारण से पान भी नहीं छोड़ सके, सुपारी नहीं छोड़ सके, देह की आसक्ति नहीं छोड़ सके, और गोपी प्रेम हम सुनेंगे। गोपियों का प्रेम कैसा, जो कि उद्धव जैसे भीष्म पितामह लोग नारद जी तक उसको नहीं पहचान सके, भागवत में उन्होंने वर्णन किया। हमको कहा गया इसलिए कह रहे हैं, तो हम लोग ये जो अभी बतला रहे हैं यही हम बतलाते हैं। जिनकी देह की आसक्ति नहीं गई, जिनका अभिमान दूर नहीं हुआ, जो अपनी प्रतिष्ठा सब समय चाहते हैं, भागवत हो रही है और अपनी प्रतिष्ठा इसमें से बना रहे हैं, कान सुन करके हम उनको चीजों को धारण करके हम ऐसा ही प्रेम के लिए तपस्या करेंगे तब तो होगा। इसलिए आप लोगों के अग्रवाल समाज से हमको अभिनंदन किया गया, खंडेलवाल समाज से, अग्रवाल का ही एक अंश है या ये अलग है खंडेलवाल? ये सबका जन्म स्थान क्या है, भगवान से दूसरे भगवान ने उनको पैदा किया, ये एक ही भगवान ने पैदा किया? खंडेलवाल को किसने पैदा किया, ब्राह्मण को किसने पैदा किया, किसको किसने पैदा किया? बस ये भ्रम ही भ्रम है। इस चीज को समझिए, अनुभव कीजिए। हमने जो कुछ संदेश दिया अभी तक, मैं अभिनंदन योग्य नहीं, एक डाकिया है उसको पोस्ट ऑफिस से 1,000 रुपया दिया गया कि ये रुपया वो अमुक व्यक्ति को दे आओ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? डाकिया ने 1,000 रुपया लिया डाक से, डाकखाने से, और लेकर के वो वितरण करने के लिए गया। उसने खोज करके, अनुसंधान करके योग्य व्यक्ति को देखा और पता लगा कि वही व्यक्ति है कि नहीं, और ठीक व्यक्ति को जाकर के 1,000 रुपया दिया और गवाही ले ली दूसरों से ये वही व्यक्ति है, और उनका भी सिग्नेचर ले लिया। आज भी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वो क्या कहेगा जी, ये डाक जो नहीं जानता होगा वो तो कहेगा जैसे ये डाकिए वाले ने रुपया दिया। अच्छा, डाकिए ने रुपया दिया उसको, न किसने दिया, जिसने भेजा है उसने? तो ये किसका वो ऋणी होगा, वो डाकिए का ऋणी होगा, न पोस्टमास्टर का ऋणी होगा, अन्ना से जिसने रुपया भेजा है उसका ऋणी, जिसने भेजा है उसका ना। ये हमारे पिताजी ने, हमारे भैया ने, हमारे बेटे ने ये रुपया 1,000 भेजा है ना, तो उगाइया हाँ भैया का प्रेम हमारे प्रति कितना है कि 1,000 रुपया हमारे लिए भेजा। देख जातिया को कहेगा जैसे तुमने 1,000 रुपया दिया इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं, यदि ऐसा सोचा तो मूर्ख है। वैसे ये जो हम संदेश जो दे रहे हैं अपना नहीं, मैं अपने गुरु वर्गों के खजाने से लेकर आप लोगों को दे रहा हूं। इसलिए यदि अभिनंदन जो कोई है तो कौन है, हमारा गुरु वर्ग है, चैतन्य महाप्रभु हैं, कृष्ण हैं, इसके लिए हमारे गुरु वर्ग रूप सनातन जी हैं, हमारे खास गुरु नित्य लीला प्रवृत्त ओम विष्णुपाद हैं, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, ये लोग हमारे मूल गुरु हैं, उनसे ये सब चीजें लेकर के आपको दे रहा हूं। आप लोग बड़े प्रेम के साथ में इन चीजों को ग्रहण करके अपने जीवन में यदि उतारें आप जरूर सुखी हों। इसलिए अभिनंदन का मैं उपयुक्त पात्र नहीं, आप लोग नहीं समझते, इसलिए हमें अभिनंदन कर रहे हैं। अभिनंदन का मूल पुरुष कौन है, हमारा गुरु वर्ग है, कृष्ण है, राधा जी हैं, उनके मुख से ये सब बातें भागवत में आई हैं, और हमारे महापुरुषों ने उन बातों को भागवत से लेकर के हम लोगों को सुनाई और हम लोग उसको सर्व सहज रूप में सत्रु। यदि मैं कहूं कि मैंने सुनाया, मैं ऋण इसका ये हूं, इसलिए प्रणामी का फल यहां परख दो, रोज आरती में पैसे जो आएंगे वो मेरे हैं और रोज हमको पैसा चाहिए, कही ये मेरी बेवकूफी है, इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भागवत के उपदेश हैं, जीव मात्र भगवान का दास है, जो भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान का नाम नहीं करेगा, लाख चेष्टा करो, लाख वाणिज्य व्यवसाय करो, दिन रात व्रत तप पचते हुए मर जाओगे, सुखी नहीं रह सकते, इस चीज को गांठ बांधो। लाख धनी आदमी होगा तभी नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग कुछ समय निकाल करके सवेरे शाम, जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, वो भगवान नाम करो। भगवान के नाम के समान और कोई साधन नहीं। जो लोग कहते हैं योग करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, वो ठग है। आपके पास में ऐसी बातें कह करके कुछ ठगने के लिए आते हैं धन, वो अपने को ठगते हैं, दूसरों को ठगते हैं, इसलिए इनसे सावधान होना। ये देखना कि ये भजन करते हैं कि नहीं, भागवत और गीता की बात, रामायण की बात मान करके भगवान नाम करते हैं कि नहीं, तब तो उनकी बात सुनना, नहीं तो इन ठगों से सावधान रहना। विशेष करके आजकल भगवान बहुत बने हुए हैं, दक्षिण देश में, दिल्ली में, घर में बहुत भगवान हैं, बहुमूर्ति बांटते हैं, बूढ़े हो रहे, दांत टूट रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, या ऐसे ठग जो भगवान हैं उनसे दूर रहे। भगवान ये नहीं कहता जे मैं भगवान, वो तो जगत का कल्याण सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकता है, इसलिए इन दुष्टों से, इन नकली भगवानों से आप लोग बचेंगे। विशेष करके ये जो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, उनसे जरूर बचिए, नहीं तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपसी देशादे रूप में भगवान ने जो आपको प्रवृत्ति दी है, सेवा की वृत्ति दी है, उस सेवा भगवान का करें और सबके साथ में प्रीति रहे, किसी से भी प्रीति रहे, बंधु बांधवों से, पास पड़ोसियों से, ये नहीं कि अग्रवाल समाज है बस इसी से, ऐसा नहीं, ये खंड अलवाल है बस इन्हीं से प्रीति रहे, ऐसा नहीं। मनुष्य प्राणी मात्र के प्रति प्रीति हो और भगवान से प्रेम हो। आज यही कहकर के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, 12:30 बजने जा रहा है और हम लोग फिर शाम को आएंगे, आज का प्रवचन हम लोग करेंगे, आप लोग अधिक संख्या में आएंगे। आज यही कह करके अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। ₹50,000 लेते हैं एक घंटे, किंतु हमने 7 दिन तक प्रोग्राम किया, हमारे लिए क्या दिया इसके लिए उनकी तो महत्ता हो गई, बस उनकी तो बातें उड़ जाएगी, और हम लोगों को क्या दिया। अरे ये कहो कि हम आपके लिए श्रद्धा और प्रेम रखते हैं, ये तुम्हारे ज्ञान में, हम पैसा लेते ही नहीं है, आप कुछ नहीं जानती। सतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विजे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालयै, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं न मां शरणन्ति भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे मस्ते चरणारविन्दम्।
हम लोगों का कल का प्रसंग चल रहा था श्रीमद् भागवत के गोपी गीत का प्रसंग। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं। बड़ी अटपटी बात है, परीक्षित महाराज जी अभी कल परसों मरने वाले हैं। आज करीब करीब पंचम दिवस है, 7 दिन में से पंचम दिवस, अब 2 दिन बाकी हैं उनको मरने में, और उनको सुना रहे हैं गोपियों के साथ में रासलीला और कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए, गोपियां उनको विरह में तड़प रहे। मरने के समय इसकी क्या जरूरत, सुखदेव गोस्वामी मुक्त महापुरुष हैं, परीक्षित महाराज भी कम नहीं है, भागवत जगत में प्रकटित हो, इसलिए परीक्षित महाराज जी के माध्यम से यह भागवत प्रकट होगा, और इसी के बहाने में सुखदेव गोस्वामी वहां आए। सुखदेव गोस्वामी ने, परीक्षित महाराज जी ने सब काम छोड़ दिया, राज्यपाट सब छोड़ दिया, गंगा के किनारे बैठकर अभी बंद करो, ए अभी बंद कीजिए तो सब काम, चुपचाप बैठ जाओ, सुनो पहले कर लेना चाहिए, जाइए। परीक्षित महाराज राज्यपाट छोड़ दिया, राजमुकुट छोड़ दिया, भूखे प्यासे और बैठ गए, और उसी समय में सुखदेव गोस्वामी पढ़ा, नंग दंग पढ़ाए, और उन्होंने यही प्रश्न किया, जो मर रहा हो अभी उसके लिए क्या जरूरत, क्या करना चाहिए, और जो आज न कल न परसों न बरसों जरूर मरेगा उसके लिए क्या करना। उन्होंने कहा बस अभी जो मर रहा है उसके लिए तो बस तुरंत हरि नाम सुनाओ कान, और कुछ की जरूरत नहीं है, और जिसको लिए 1-2 दिन 1 घंटा समय है और हो सवास में है तो उसको हरि कथा के साथ में हरि नाम सुनाओ, भगवान के लीला कथाओं के साथ, इसलिए लीला कथाएं उनको सुना रहे हैं, और ऐसी लीला कथा गोपियों के प्रेम की बात कृष्ण के प्रति, यदि मरते समय उन कथाओं का स्मरण हो जाए बस संसार से मुक्ति का बात क्या, वो तो ब्रज में पहुंच जाएगा, उसका जन्म मरण बंद हो जाएगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसलिए परीक्षित महाराज जी को वो सुना रहे हैं और वो सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज जी ने बीच में प्रश्न किया, गोपियां का तो कृष्ण में भगवान का ज्ञान नहीं था, ये भगवान है, वो तो साधारण रूप में अपना प्रेमी समझती थी, अपना उपपति समझती थी, और उनके साथ में उन्होंने रास इत्यादि किए, भगवान का तो भाव था नहीं उनमें, तो बतलाओ तो ये उनके साथ में अपने पतियों को छोड़ा और उनके साथ में रास विलास किया, ये धर्म का व्यतिक्रम हुआ, धर्म का उल्लंघन हुआ, तो उनकी गति कैसे हुई? ये तो अपने पहले कह दिया, यदि क्रोध से, काम से, स्नेह से, संबंध से, भय से, किसी भी प्रकार से भगवान के साथ में संबंध हो जाए, भगवान का शत्रु मान करके भी कोई व्यक्ति यदि उनका स्मरण करता है, जैसे कंस एकदम निविष्ट हो गया, कंस कृष्ण को कैसे मारूंगा, वो हमारा शत्रु है, और ऐसी चिंता करते 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 उसके सारे पाप कट गए और उसको मुक्ति मिल गई, तो फिर पर यदि प्रेम से, स्नेह से यदि भगवान का स्मरण करे, काम के द्वारा भी, तो उनकी बहुत ऊंची गति होगी। इसलिए इस चीज को समझो, किसी प्रकार से भी पूतना मैया का वेश बनाकर गई भली मारने के लिए, किंतु उनको कहां ऊंची गति हुई। आज जो काम से कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझकर और कृष्ण से मिलने के लिए गई, पतियों को भी छोड़ दिया, असल में तो पति तो कृष्ण ही है, ये पति अभी नकली हैं, दो दिन के लिए, चार दिन के लिए इनका संग आज नकल छोड़ना पड़ेगा, किंतु कृष्ण परम पति हैं, पतियों के भी पति, विश्व के पति, संसार के पति, समस्त प्राणियों के पति वही हैं। पति माने क्या? पा माने पालन पोषण करना। तुम्हारी जब शादी नहीं हुई तब कौन किसने पालन पोषण किया? पिता मिता के माध्यम से उन्होंने, कृष्ण नहीं किया, अभी वही करेंगे, पति मर जाने के बाद भी वही करेंगे, इस जन्म के बाद भी वही करेंगे, इसलिए परम पति कृष्ण है। इसलिए गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, यही वो बल्कि उनका साधारण प्रेम नहीं था, उनका जो प्रेम था वो कृष्ण की लालनी शक्ति है, कृष्ण जैसी ही है, सच्चिदानंदमयी है, जगत में कृष्ण और अपनी शक्तियों के साथ में उतरे थे और उतर करके शिक्षा दी। जो इन लीला कथाओं को यदि पढ़ेंगे, कोई स्मरण करेंगे, तो उनका भी संसार से मुक्ति होकर के कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाएगा। आज 5000 वर्ष हो गए, किंतु इन लीला कथाओं को जो सुन रहे हैं और इसका स्मरण एक दिन भी करेंगे, उनके अंदर में भक्ति की बीज हो जाएगी और वो लोग संसार सागर को अनायासी पार कर जाएंगे इन कथाओं से। जो कृष्ण स्वरूप में जो सारी शक्तियां थी, उससे भी अधिक इन लीला कथाओं में है, ऐसा समझिए। इसलिए उन लोगों ने ऐसी लीलाएं, प्रेम की पराकाष्ठा है, वैसा प्रेम इस जगत में नहीं है। कल हम लोग कुछ दिनों से उसके संबंध में बतला रहे हैं, कुछ अनुशीलन इस विषय में कर रहे हैं। अब कल हमने पूर्वार्ध पुष्टा किया था, गोपी जी का, गोपियां और विरह में सन्मय हो गए, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हुए, कृष्ण कैसे चलते थे, बोलते थे, छिछोली कैसे करते थे, इन सब का स्मरण करके और भी विरह में कातर हो गई और उनको पुकारने लग गई। अंत में वो कहते हैं, सत्ते सुजात चरणाम्बरू हम तनेशु गीता स्वयं प्रिय दधीम ही कर सके। आप अभी अंतर्ध्यान होकर के यहाँ से हम लोगों को छोड़ करके वन में जो जा रहे हैं, आपके चरण कोमल इतने सुकोमल हैं, ये लक्ष्मी अपनी गोदी में लेकर के उसका संभालन करती हैं, और उस पैर से अभी जंगलों में जा रहे हैं, गायों के पीछे दौड़ रहे हैं, वहाँ के पत्थर नोकीले नोकीले आपके पत्थर, उसमें क्या चुभते नहीं हैं, नए अंकुर घासों को उसमें चुभते नहीं होंगे, जिसको हम अपने हृदय में भी धारण करने में संकोच करती हैं, डरती हैं, और वो चरणों से आप इस कंकड़ीली पत्थरीली जमीनों पर चलते हैं, गायों के पीछे चलते हैं, गाय किधर किधर जाती हैं वो ठीक नहीं, उनके तो खून होते हैं और आप चलते हैं, इसलिए हमें बहुत ही दुख होता है। और ऐसे विलाप करते 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 तन्मय हो गई, मूर्छित हो गई, कृष्ण सह नहीं सके उनका यह क्रंदन सुनकर के। गान गा नहीं रही, स्वर से निकल रहे हैं और ऐसे तन्मय होकर के क्रंदन करने लगी, कर्तन करने करते 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 पछाड़ खा करके गिर पड़ी। और कृष्ण ने देखा, कृष्ण तो कहीं दूर थे नहीं, वो सभी देख रहे हैं हमारे वीर में ही क्या कर रही हैं, जगत ये समझे, मिलन में तो देखा किंतु हमारे विरह में ये गोपियां कैसी तड़पती हैं, कैसे पागल बन जाती हैं, ये देखें। किसी का पति मर जाने पर जगत में हम देखते कि पत्नियां रोती हैं, माता रोती है, किस लिए रोती हैं? अपने सुख के लिए रोती हैं कि वो जो सुख उनके समय में था वो अब नहीं मिलेगा। गोपियां उसके लिए नहीं रोती, कृष्ण ने उनके जीवन के समय में जीवित रहते हुए आज तक किसी भी गोपी को एक कपड़ा दिया, कोई चीज दिया, क्योंकि विवाह की स्थिति तो थी नहीं, अपने पिता के घर में, ससुर के घर में खाती पीती थी।